चांद से रोशन बच्चों और सितारों से टिमटिमाते बच्चों को हमारा सलाम। जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के पाक बाबरकत नाम के साथ। और आज भी प्रोग्राम में मेरे साथ हैं गिलगिली, आपी और आप। हम सब साथ मिलकर प्रोग्राम करेंगे और यकीन मानिए प्रोग्राम जबरदस्त होने वाला है। और गिलगिली कह रहे हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं और उनका दिल आपके लिए से धड़कता है, तो बहुत ही प्यारी बात है। क्या ये क्या हालत बनाई है तुमने? तुम जा रहे हो दावत, कह रहे मैं जा रहा हूँ दावत पर। भला कोई दावत पर गिलगिली मियां ऐसे जाते हैं क्या? ये तुमने क्या पहना है? ये तुम्हारी शर्ट, वो तुम्हारी, ये तुम्हारी स्कूल की शर्ट है, वो तुम्हारे फुटबॉल की पैंट है। अरे बाबा, दावत है तो क्या हुआ? सुनो मेरी, अरे मदद करो मेरी दोस्तों, मैं कैसे समझूंगी कैसे बांध रही है? गिलगिली ऐसे नहीं बांधते, वो पट्टी यहाँ, ये पट्टी यहाँ। मेरी बात सुनो, असल मेरी बात सुनो, ये कपड़े दावत के कपड़े नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जब हम अपनी अम्मी अब्बू के साथ दावत में जाते हैं तो जो भी हमारे हाथ में आया हम पहन के जाते हैं। नहीं ना, दावत में जाने के खास खूबसूरत साफ सुथरे प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं। पता है जब मैं छोटी थी ना और मेरी अम्मी मुझे किसी दावत पर लेके जाती थी, खुश होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छे नए नए खूबसूरत कपड़े पहनने को मिलते थे। देखिए घर में भी हम साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो दावत वाले कपड़े, वो चमकीले खूबसूरत कपड़े, वो तो बहुत ही प्यारे होते हैं। और तुम ये पहन के जाओगे? अरे तुम दावत में जा रहे हो फुटबॉल खेलने जा रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, तुम दावत में जा रहे हो ताकि तुम वहां पर बैठ सको, अच्छी अच्छी बातें कर सको, मजेदार खाने खा सको, लेकिन तुम्हारी टोपी भी चढ़ी ऊपर से, कि आस्तीन सही करो, अच्छी तरह बांधो। अरे ऐसे कौन जाता है? शर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी तुम्हारी, चित बदल कराओ अपने कपड़े, क्या पहने हैं तुमने? दोस्तों क्या आप ही दावत में जब जा रहे होते हैं तो कोई भी कपड़ा आपके हाथ में आप पहन लेते हैं? हाँ हाँ, अलमारी के उस हिस्से में जहाँ पर दावत के खास कपड़े हम लटका कर रखते हैं तो हम वही पहनते हैं, अच्छी तरह इस्त्री किए हुए कपड़े, साफ सुथरे धुले हुए नए नए अच्छे कपड़े, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ पर केचप गिरा है, यहाँ पर चाय गिरी है, और जैसे इन गिलगिली गम घुट जाएगा तुम्हारा, खोलो इसे, खोलो खोलो। अरे मदद करे मेरी, खोलो इसे, अजीब लग रहे हो, खोलो इसे गिलगिली। अरे बाबा, हाँ देखो सांस मिली ना तुम्हें, मेरी बात सुनो, हमेशा आप किसी के घर जाते हैं कहीं दावत पर, खाला के यहाँ, फूफो के यहाँ, चचा के यहाँ, अच्छे साफ सुथरे धुले हुए कपड़े, अब नए भी ना हो लेकिन धुले हुए तो हो ना, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये होता है कि अपने कपड़ों से अपनी शख्सियत हम दिखाते हैं लोगों को। गंदे कपड़े पहनेंगे तो लोग बोलेंगे अय हाय ये तो गंदा है, बुरे कपड़े पहनेंगे तो बोलेंगे इस तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है, है ना? और पता है हमेशा खुद हमारे रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अच्छे और साफ कपड़े पहनते थे, खास तौर पर अगर ईद का मौका हो तो नए और अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े। लेकिन तुम अगर इस तरह जाने वाले हो तो बहुत बुरा लगेगा, मेरी बात मानो, जाकर अपने घर में अपने कपड़े बदल कर आओ, ठीक है? ताकि तुम जाओ तो वहां बोले अरे वाह गिलगिली के कपड़े को देखो कितना अच्छा लग रहा है गिलगिली, है ना? तुम्हारी तारीफें होंगी, अच्छे कपड़ों की तारीफें होंगी, बोलेंगे गिलगिली तुमने ये शर्ट कहाँ से खरीदी, हमें भी बताओ ताकि हम भी खरीद सके। भाई मुझे तो ये जुमले बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? जब कोई मेरी तारीफ करता है ना, जबरदस्त। तो मैं एक काम करती हूँ, उसे कपड़े हम बदलवाते हैं, आप देखिए एक सांस के बाद हम आपकी खिदमत में वापस लौटेंगे, ऐसे बदल लो। बिल्कुल भी सोच रहे हो क्या, बड़े होके शायर बनोगे तुम?
रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज भी हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो है एक जालिम बादशाह के मुतालिक। एक बादशाह होता है जो बहुत ही जालिम होता है, अपने लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता है। एक दफ़ा बादशाह जो है वो कहता है कि मुझे जो है वो एक नया महल तामीर करवाना है, तमाम लोगों से कहो कि इसके लिए मुझे तमाम जितना भी मालो दौलत पैसा उनके पास है वो मुझे दे दें। बादशाह के सिपाही जो है वो ज़बरदस्ती लोगों से सारा मालो दौलत सारा पैसा ले लेते हैं। इसके बाद जो है बादशाह कहता है कि तमाम लोगों को बोलो कि जितने भी गधे उनके पास हैं वो हमें चाहिए, क्योंकि सामान इधर से उधर लाने के लिए महल बनाने के लिए हमें गधों की जरूरत होगी। अब बेचारे लोग जो अपना छोटा मोटा काम करते थे, अपने काम पर जाते थे, खेतों में जाते थे, गधे के जरिए अपने बहुत सारे काम करते थे, मजबूरन जो है वो उन्हें अपने गधे देने पड़े। जो नहीं देते थे, सिपाही जो है वो उनको मार पीट के और गधे ले जाते थे उनसे। लोगों ने ये किया कि अपने गधों को छुपा के रखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद होता यह है कि बादशाह जो है वो शिकार की गर्ज से निकलता है, उसे एक हिरन दिखाई देता है और हिरन को पीछा करते हुए, हिरन का पीछा करते करते वो बहुत दूर जा निकलता है और अपने सिपाहियों से जुदा हो जाता है। अब वो परेशान भी हो जाता है, एक जगह दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठ जाता है तो उसके कानों में आवाज़ आती है। वो जो लोग थे जो नज़दीक के घर में रहते थे वो बातें कर रहे थे आपस में, कहने लगे कितना ज़ालिम है हमारा बादशाह, सब चीज़ें हमारे से ले ली हैं, हमसे ले ली, हमसे हमारा गधा भी ले लेना चाहता है। परवरदगार जो है ना वो इस बादशाह को जल्द अज जल्द नाबूद करे ताकि हमारी जान इस बादशाह से छुट जाए। अब बादशाह ये सुनता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। सुबह वो अपने महल वापस पहुंचता है और जो है वो अपने सिपाहियों का हुक्म देता है कि वो जो ख़ानदान जो उस जगह पर आबाद है उसे लेकर आओ मेरे पास, उस आदमी को। वो आदमी जो है बूढ़ा कि जो बातचीत कर रहा था अपनी बीवी से बादशाह के बारे में, जब दरबार में पहुंचता है तो बादशाह उससे कहता है कि तुमने मेरे बारे में इस तरह से कहा था, हाँ। अब वो बादशाह जो है वो बिल्कुल नाराज़ और गुस्से में और तैयार है उसको सज़ा देने के लिए। अब वो जो आदमी था, जो बुज़ुर्ग था, बूढ़ा था और जो बादशाह के हाथों परेशान था, वो कहने लगा, बादशाह सलामत, सिर्फ मैं नहीं बल्कि आपकी तमाम रियाया, इस मुल्क के तमाम लोग आपके बारे में यही कहते हैं, क्योंकि आपके जुल्म की वजह से तमाम लोग परेशान हैं। बादशाह कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता तुम यहाँ पर खड़े उस तरह की बातें कर रहे हो, मैं अभी चाहूँ तो तुम्हें जो है ना वो मरवा दूँ और कत्ल करवा दूँ। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि आप जो हैं वो कौन होते हैं, आपके हाथ में ज़िंदगी और मौत तो नहीं है, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और अगर आप मुझे कत्ल करवा भी देंगे तो उसमें क्या है, एक ना एक दिन तो सब ने मरना और अपने आमाल का हिसाब देना है। बादशाह सलामत, आप ये सोचिए कि जब आप मर जाएंगे तो आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, किस तरह से जो है वो हिसाब देंगे सारा। ये बात सुनता है तो बादशाह जो है वो एकदम से खौफजदा हो जाता है और सोचता है कि वाकई ये जो बूढ़ा आदमी है ये बात तो सही कर रहा है, मरने के बाद अल्लाह को जवाब तो देना है और मैं तो इतना जुल्म करता हूँ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों की इस्लाह करता है और सोचता है कि मुझे अपनी इस्लाह करनी है, अपने रियाया के साथ मेहरबानी से पेश आना है। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है इससे मुराद मेहरबान हो जाता है अपने लोगों के साथ, और लोग भी बादशाह को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी भी तमाम कहानियों की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
अजीज दोस्तों, खुश आमदीद कहती हूँ आपको एक बार फिर, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको ये जबरदस्त और बहुत ही प्यारा सा हिस्सा बहुत पसंद आया होगा। मुझे भी पसंद आया ये हिस्सा आपको और आपको। हाँ, अरे हाँ, गिलगली, तुम्हें तो इस वक्त पर स्कूल में होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह इशारा किया आपने, मुझे बिल्कुल याद नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हारे स्कूल, हाँ, तुम्हारे स्कूल में रंग हो रहा है, तुम्हारे स्कूल में रंग हो रहा है, इसके स्कूल में रंग हो रहा है। नहीं, दोस्त कह रहे नहीं नहीं कोई रंग बंग नहीं हो रहा तुम्हारे स्कूल में। तुम्हारे प्रिंसिपल और तुम्हारे उस्ताद को, ओह, सर्दी लग गई है, नजला जुकाम। हमेशा मैं कहती हूँ भाई, अच्छे कपड़े पहना करो, ढका करो जिस्म को ताकि सर्दी ना लगे। लग गई ना, और तुम्हारा पूरा एक दिन जाया हो गया, तुम पढ़ाई से भी एक दिन पीछे रह जाओगे। वैसे पता है अदब क्या कहता है हमें? हमारा अदब हमें सिखाता है कि हम उनको फोन करके उनकी तबीयत पूछे, है ना? क्यों? नहीं 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 नहीं, उस्ताद की तबीयत पूछना हमारा फर्ज है। मैं बात करूंगी, फिर तुम भी बात करना, साथ हम पूछेंगे, ठीक है? रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे उस्ताद की तबीयत पूछना चाह रही हूँ, तुम भाग कर जा रहे हो, रुको यहीं पर। बैंक जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, रिदली भी ठीक है। अरे, मैंने सुना कि आपको नजला जुकाम हो गया, मैं बहुत परेशान थी। आपको नजला जुकाम नहीं हुआ है? हाँ, गिलगिली ने मुझसे उसे स्कूल से निकाल निकाल दी। नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं फिर फोन करती हूँ आपको। तुम बताओगे या मैं बताऊं? कौन बताएगा? मैं बताऊं? इन्होंने मुझे कहा मेरे स्कूल में रंग हो रहा है, आपने कहा नहीं। इन्होंने कहा अच्छी, मेरे उस्ताद को लगी है सही वाली सर्दी और उनको नजला जुकाम हुआ है, इसलिए आज क्लास में वो नहीं आएंगे और मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक, कोई सर्दी वर्दी नहीं लगी, कोई नजला जुकाम नहीं हुआ उनके साथ को, इसने मुझे झूठ कहा है। क्यों जी? ये साहब स्कूल में यूनिफॉर्म की जगह कुछ और जो इनका दिल चाहता है पहन के जाते हैं, कोई भी कपड़ा, कोई पैंट, कोई शर्ट, आपस में कोई इनका लेना देना नहीं है। क्यों गिलगिली, तुम्हें यूनिफॉर्म नहीं पसंद? एक बात बताओ, तुम्हारी पसंद के मुताबिक क्या उन्होंने यूनिफॉर्म बनाए? ओहो, जेब में नहीं घुसा। हाँ, तुम्हारी पसंद के मुताबिक वो यूनिफॉर्म बनाएंगे। अरे तुम्हें नहीं पसंद तो इतने सारे और बच्चे वहां पर है थे, वो भी यही कहेंगे। यूनिफॉर्म एक तरीके से यानी एक नज़्म के तौर पर हम जब जाते हैं स्कूल पर, मिसाल के तौर पर देखिए, आप जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स के पास, सबके कपड़े एक जैसे। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म भी इसलिए होता है ताकि आपकी निशानदेही कर सके कि आप किस स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, है ना? शक्लें मत बनाओ ऐसी मेरे सामने और खड़े रहो, तुम्हें किसने कहा जाने के लिए? नन्हे फरिश्तों को खुशामदीद कहती हूँ आपको एक बार फिर, और यहाँ पर मैं गलगली से बात कर रही हूँ उस हवाले से। जनाब, हर जगह जाने के खास कपड़े होते हैं, स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म, दावत पर जाने के लिए प्यारे प्यारे कपड़े, घर में पहनने के अपने कपड़े, फुटबॉल खेलने के अपने कपड़े, और इसी तरह कपड़े और कपड़े और कपड़े, ठीक है ना? लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम यहाँ पर पैसों का कुछ ज्यादा ही खर्च ना करें। महदूद कपड़ों में रहकर भी इंसान, यानी महदूद तादाद में अगर कपड़े हो तो रहकर भी इंसान खूबसूरत और बहुत ही हसीन और दिलकश रह सकता है और हमेशा तारीफें पा सकता है। और ये क्या लेकर आए हो तुम यहाँ पर बेटी? क्यों, इसमें क्या है? तुम गए थे अम्मी अब्बू के साथ बाजार, सही? हमने कपड़े खरीदे, बहुत सारे कपड़े। लेकिन इतने सारे कपड़ों को तुम क्या करोगे? पांच टोपियां, पांच शर्ट, पांच पैंट, पांच दस्ताने, पांच मोजे। हाँ, इतने सारे कपड़ों का तुम क्या करोगे? ये कपड़े तुमने क्यों खरीदे इतने सारे? ताकि तुम अच्छे लग सको, खूबसूरत लग सको और साफ सुथरे। दोस्तों, ज्यादा तैयार में कपड़े हो तो क्या हम अच्छे लगेंगे और खूबसूरत लगेंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं है। खिलखिली, हम कम कपड़ों में, कम मिकदार में अगर कपड़े हों तो उसमें भी हम अच्छे लग सकते हैं, खूबसूरत लग सकते हैं, साफ सुथरे लग सकते हैं। बात यह है कि हम उन कपड़ों को संभालते किस तरह से हैं। इतने सारे कपड़े तुमने खरीद लिए, तुम बड़े हो रहे हो, ये कपड़े तुम्हें टाइट हो जाएंगे, तंग हो जाएंगे कपड़े, तो तुम कहाँ पहनोगे? इसे रखो नीचे, ठीक? इसे तुम रखो नीचे, मेरी बात सुनो। देखो, कपड़े कम हो तुम्हें साफ सुथरा संभाल कर रखो और पहनो हर जगह जहाँ तुम चाहते हो, ज्यादा पैसे खर्च करना एक तरह का इसराफ है। पैसे ज्यादा खर्च करते हो। अब्बू सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और हम यूं उड़ाते रहते हैं और समझते हैं कि हाँ भाई ज्यादा कपड़े तो हम अच्छे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सही कम तादाद में भी हम अच्छे लग सकते हैं। तादाद कम हो, महदूद हो, तो उसमें भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। कपड़े ये होता है अक्सर कि हम खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, और फिर आखिर में भी जब कहीं जाने की बारी आती है, अलमारी खोलते हैं और बोलते हैं हाँ मैं क्या पहनूं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। जितनी ज्यादा चीजें होंगी इंतखाब करना उतना ही मुश्किल होगा, है ना दोस्तों? इस बात का खास ख्याल रखिए। देखिए इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपने कब, कहाँ और किस तरह के कपड़े पहने। हर जगह जाने के लिए उनके अपने मुनासिब कपड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे फुटबॉल खेलना है, ठीक, सोचो मैं स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के जा रही हूँ फुटबॉल खेलने, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, इसका मैं साथ चलूँ कि वापस देंगे, ठीक है? वापस देंगे दो कपड़े, दो काफी हैं, पांच की जरूरत नहीं है, हम दो कपड़े रखेंगे वो काफी हैं, ठीक। सोचो मुझे जाना है किसी शादी में, मैं वहां फुटबॉल के कपड़े पहन के जाऊं, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हर जगह के अपने लिहाज से, और मिसाल के तौर पर वो किस तरह का वहां पर फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, दावत है, फुटबॉल मैच है, उस लिहाज से उसके मुनासिब कपड़े होते हैं। हम हर जगह कपड़े देख दाख कर पहनते हैं और कम तादाद में हम बेहतरीन तरीके से इंतखाब करके खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहन सकते हैं और बहुत ही अच्छे लग सकते हैं, ठीक है ना अजीज दोस्तों? तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने गिलगिली की मदद करनी है ताकि ये कपड़े हम वापस दे आए। दो ही कपड़े जोड़े, यानी जो ही जो जोड़े हैं वो काफी है इसके लिए, और उसी में ये पूरे कुछ महीने निकाल सकता है। देखिए हम लोग हर रोज नशोनुमा की हालत में है, ठीक है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, कपड़े तंग हो जाएंगे और फालतू में पैसे जाएंगे। चले हम लोग, हम जा रहे हैं कपड़े लेने वापस, आप देखिए अच्छा सा हिस्सा। Thank you. अपने चांद से प्यारे बच्चों को उनके अपने प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ इस दुआ के साथ कि आपको ये जबरदस्त सा हिस्सा जो मेरे बहुत ही अजीज साथियों ने बड़ी ही मेहनत से तैयार किया है आपको बहुत पसंद आया होगा। बात हम कर रहे थे कि आप किस तरह से अच्छे और बहुत ही प्यारे कपड़े पहन सकते हैं। तादाद जरूरी नहीं है बल्कि वो कहते हैं ना वो अच्छी तरीके से संभालना ये बात जरूरी है।
Really?
क्या बात है भाई तुम्हारे कपड़े कितने प्यारे हैं और तुम कितने प्यारे लग रहे हो गिलगिली। वाह कहाँ जाने की तैयारी है। दोस्तों ये आपको बहुत चाहता है कह रहे मेरे कपड़े तब्दील हुए लेकिन मैं तब्दील नहीं हुआ हूँ मैं आपको चाहता हूँ। गिलगिली कहाँ जा रहे हो तुम जा रहे हो। हाँ तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे कपड़े धोए उनको इस्त्री की और तुम्हें दिया पहनने को। वाह भाई बहुत ही अच्छा था। तुम कहाँ जा रहे हो तुम जा रहे हो। हाँ उनको तुमने शाबाश गिलगिली कह रहे हो कपड़े फेंक दिए ऐसे और तुम कहीं दावत पर जा रहे हो मजे मजे के खाने खाने। शाबाश वाह भाई गिलगिली के तो बड़े मजे हो गए। और बिल्कुल गिलगिली शाबाश बहुत ही अच्छी बात है तुमने बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही ढंग से तुमने कपड़े पहने हैं और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों गिलगिली हमेशा की तरह यहाँ पर इसने मेरी बात सुनी और आपने देखा माशाल्लाह चांद का टुकड़ा लग रहा है तुम्हें बुरी नजर ना लगे गिलगिली बहुत ही अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल मैंने इसकी नजरें भी उतार ली हैं अल्लाह ताला से नजरें बद से बचाए। खैर मैं आपको एक बात बताती हूँ अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि भाई हम जहाँ भी जाएँ जो भी मर्जी कपड़े पहन लें माहौल का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किस तरह के माहौल में जा रहे हैं खुले माहौल में जा रहे हैं या बंद माहौल में। खुले माहौल में जा रहे हैं तो एक जैकेट साथ उठा लें कहीं सर्दी ना लग जाए। बंद माहौल में तो फिर आपको पता है कि कहीं गर्मी लगने का डर है तो मुनासिब कपड़े पहन कर जाइएगा। आप हर हवा में हर मौसम में उनके अपने मुनासिब कपड़े होते हैं हर माहौल के मुनासिब कपड़े और फिर हर जगह के अपने मुनासिब कपड़े। आप जा रहे हैं दावत पर मुनासिब कपड़े स्कूल मुनासिब कपड़े आप जा रहे हैं फुटबॉल खेलने तो फिर मुनासिब कपड़े आप जा रहे हैं शादी में तो भाई बड़े प्यारे प्यारे मुनासिब कपड़े। ऐसा तो नहीं है आप फुटबॉल के कपड़े पहनकर शादी में जाएंगे शादी के कपड़े पहनकर स्कूल जाएंगे और स्कूल के कपड़े पहनकर घर में बैठ के खाना खाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर अपनी सफाई का आपने खास ख्याल रखना है। सफाई क्या है निस्फ ईमान है। सफाई सिर्फ नहाने धोने दांत ब्रश करने में नहीं है साफ सुथरे कपड़े पहनने में है। जैसा गिलगिली ने यहाँ पहना है देखिए अपने दांत भी ब्रश किए हैं नहा कर भी आया है चमकीले साफ सुथरे कपड़े। हाँ नाखून भी काटना बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है नाखून भी काटने चाहिए। इसके अलावा कपड़े साफ हों चमकते हुए धुले हुए। हाँ नहाना हाँ मैंने बताया कि उसको नहाना भी चाहिए बिल्कुल। इन चीज़ों का खास ख्याल रखते हुए आप अपने जिस्म की सफाई तो करेंगे ठीक है आपकी। हाँ ओ इतर का इस्तेमाल ये भी बहुत अच्छी बात है अच्छी अच्छी खुशबू आप में से आनी चाहिए बिल्कुल ताकि लोग कहें कौन आ रहा है गिलगिली आ रहा है ना। इन चीज़ों का आपको खास नहीं कोई बेहोश नहीं होगा नहीं 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 कोई भी होश नहीं होगा तुम्हारी यह मुँह सुनकर बल्कि खुशबू तुम्हारी बहुत अच्छी है और ये सब हमारे दोस्त जानते हैं। गिलगिली ने छोटे छोटे नुकात का ख्याल रखा और अपनी अंदरूनी सफाई के साथ साथ अपनी बाहर की सफाई का भी खास ख्याल रखा। किस तरह से जी हाँ देख रहे हैं और बड़े भाई शो मारे गिलगिली यहाँ पर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इनकी अम्मी ने मेहनत की और कपड़े धोए उसे इस्त्री करके से दिया और गिलगिली ने भी वादा किया है कि मैंने गंदा बिल्कुल नहीं करूँगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है गिलगिली को जाना है दावत पर मैं भी जाऊंगी इसके साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।